ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा, युवाओं की आवश्यकताओं और भावनाओं को संबोधित करने की नीति लाना है जरूरी। स्थानीय तहों के रिक्त स्थानों में आगामी मार्गशीर्ष में चुनाव कराने को निर्वाचन आयोग ने बताया उपयुक्त। सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह परसों प्रदेश सभा में लेंगे विश्वास मत। और गजा में हुई हालिया एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में युवाओं के विशेष योगदान के लिए उन्हें उपयुक्त अवसर देने की नीति आवश्यक है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संघीयता, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार परिवर्तित युवाओं की आवश्यकताओं और भावनाओं को संबोधित करने के लिए नई नीति का आना जरूरी है। युवाओं के विदेश पलायन को बेहद गंभीर विषय बताते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण के अग्रदूत, परिवर्तन के संवाहक और राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और निर्वाचन आयोग के प्रमुख दिनेश कुमार थापड़िया सहित आयुक्तों के बीच स्थानीय तहों में रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन संबंध में आज विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुए विचार विमर्श में आयोग के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख समेत 34 रिक्त पदों के लिए आगामी मार्गशीर्ष में चुनाव कराना उपयुक्त होगा। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने ठंड के मौसम से पहले ही चुनाव करने के हिसाब से तिथि निर्धारित करने और चुनाव में मितव्ययिता अपनाने का आग्रह किया था। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति की आज की बैठक में भी विभिन्न 11 प्रस्तावित विषयों में केन्द्रीय सदस्यों के विचार रखने का क्रम जारी रहा। पार्टी मुख्यालय सानेपा में हुई बैठक में सावन 23 गते से शुरू हुई बैठक में प्रस्तुत विभिन्न 11 प्रस्तावित विषयों पर धारणा रखने का क्रम जारी रहा। यह जानकारी नेपाली कांग्रेस ने दी। बैठक ने नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति सुशील कोइराला की जन्म जयंती के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति की अगली बैठक 7 गते शुक्रवार सुबह 11 बजे पुनः बुलाई गई है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने सावन 30 गते प्रदेश सभा में विश्वास मत लेने के लिए पत्राचार किया है। उन्होंने विश्वास मत लेने संबंध में आज प्रदेश सभा सचिवालय में पत्र भेजा। ये जानकारी मुख्यमंत्री के स्वकीय सचिव राम बहादुर बिष्ट ने दी। बता दें कि सुदूर पश्चिम नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता शाह इसी सावन 20 गते को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। 53 सदस्यों वाली सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा में सरकार को बहुमत के लिए कम से कम 27 प्रदेश सभा सदस्यों के विश्वास मत चाहिए होंगे। ज्ञात हो कि यहां नेपाली कांग्रेस के 18, एमाले के 11, माओवादी केन्द्र के 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 7, एकीकृत समाजवादी के 4, राप्रपा का 1 और 1 स्वतंत्र प्रदेश सभा सदस्य हैं। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह के साथ नेपाल दौरे पर रहे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने शिष्टाचार भेंट की। सिंहदरबार स्थित शहरी विकास मंत्रालय में आज हुई भेंट में उनके बीच शहरी विकास, कचरा प्रबंधन, बागमती, विष्णुमती लगायत नदियों की सफाई लगायत, नेपाल और भारत के बीच हो सकने वाले सहकार्य आदि के विषय में विचार विमर्श हुआ था। इसी तरह उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल और गृहमंत्री रमेश लेखक के साथ भी विदेश सचिव मिश्री ने अलग अलग शिष्टाचार भेंट की। भेंट में उनके बीच द्विपक्षीय हितों और जिज्ञासाओं पर बातचीत हुई थी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने संघीय अस्पताल में भीड़ व्यवस्थापन के संदर्भ में प्रगति विवरण सहित रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया है। अस्पतालों के सेवा सुधार संबंधी रिपोर्ट के पहले चरण में 17 संघीय अस्पतालों से प्रगति विवरण प्राप्त होने के साथ ही मंत्री पौडेल ने विवरण साझा किया है। बता दें कि संघीय अस्पतालों के भीड़ व्यवस्थापन और सेवाग्राहियों को सहज सुलभ सेवा प्रवाह के लिए मंत्री पौडेल की उपस्थिति में इसी सावन 3 गते को संघीय अस्पतालों और प्रतिष्ठानों के प्रमुखों के साथ बैठक में 9 सूत्रीय निर्णय हुआ था। निर्णय होने के अगले दिन बैठक के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय ने अस्पतालों को पत्राचार किया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ने इस साल मॉनसून अवधि में देशभर करीब 1 करोड़ वृक्षारोपण करने का निर्देश किया है। मॉनसून अवधि में नेपाल भर वृहत रूप में वृक्षारोपण अभियान संचालन के लिए प्रदेशों में मौजूद सभी वन कार्यालयों, भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयों, राष्ट्रीय निकुंजों एवं आरक्ष कार्यालयों और देश के सभी 753 स्थानीय तहों में करीब 1 करोड़ वृक्षारोपण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बात मंत्री शाही ने बताई। 12 के सिमरौनगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में मछली खाने के बाद बीमार हुए एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि स्थानीय रमेश राम ने कल रविवार को भारत से आए मछली व्यापारी से मछली खरीदी थी। मछली खाने के बाद उनकी 9 साल की बेटी लालिमा, 7 साल की पुष्पा और 5 साल के बेटे कृष्ण नंदन को पेट दर्द, दस्त और उल्टियां शुरू हो गईं। बीमार बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक में ले जाया गया, जहां उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 9 वर्षीय लालिमा राम की मौत हो गई। बाकी 2 बच्चों पुष्पा और कृष्णनंदन को वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बीती रात ही इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। बहरहाल उनकी मौत फूड प्वाइजनिंग के कारण होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। घटना के बारे में विस्तृत जांच चल रही है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय 12 के एसपी महेंद्र खटका के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल क्रॉसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ ने अपने उद्योगों के नवीकरण में उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी कराई है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात कर महासंघ के अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सहित प्रतिनिधियों ने पंजीकृत 700 क्रॉसर और बालू उद्योगों को पहले के मापदंड के आधार पर ही नवीकरण की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने बताया कि वातावरण संबंधी मापदंड 2054 और उद्योग के लिए दूरी संबंधी मापदंड 2071 के आधार पर वे उद्योग संचालित हुए थे, लेकिन विक्रम संवत 2077 साल में संशोधित मापदंड के कारण नवीकरण में कठिनाई हो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा में लगातार इसराइली हमले जारी हैं। हाल ही में गजा में हुई एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आई रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमले में कम से कम 39,897 फलस्तीनी मारे गए और 92,152 लोग घायल हुए हैं। पिछले 48 घंटों में करीब 107 फलस्तीनी मारे गए। आपातकालीन सेवा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। हजारों फलस्तीनियों को खान यूनिस से भागने और एनक्लेव में कहीं और फुटपाथों और सड़कों पर बिना भोजन या पानी के सोने के लिए मजबूर किया गया है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में कई शहरों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे। हमास ने गजा के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा करने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से रखे गए युद्ध विराम प्रस्ताव को लागू करने की योजना प्रस्तुत करने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इसराइल में अनुमानित 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। नागरिक सुरक्षा सेवा के अनुसार शनिवार को गजा शहर में एक स्कूल पर इसराइली हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए, जहां विस्थापित फिलिस्तीनी गजा शहर में शरण ले रहे थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी भेजी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी इस इलाके में जल्द पहुंचने को कहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन लड़ाकू विमान F-35 से लैस है। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह कुछ बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अपने यहां मारे गए हमास नेता इस्माइल हनिया का बदला लेने का ऐलान किया था। समझा जाता है कि हिजबुल्लाह इसराइल के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। हनिया की मौत के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में पनडुब्बी भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ऐसे किसी भी हमले से इसराइल का बचाव करना चाहता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कहा कि उनका देश अपने सहयोगी देशों के बचाव के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने कहा, युवाओं की आवश्यकताओं और भावनाओं को संबोधित करने की नीति लाना है जरूरी। स्थानीय तहों के रिक्त स्थानों में आगामी मार्गशीर्ष में चुनाव कराने को निर्वाचन आयोग ने बताया उपयुक्त। सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह परसों प्रदेश सभा में लेंगे विश्वास मत और गजा में हुई हालिया एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।